उस वक्त हम कुछ भी सोचने समझने की मनोस्थिति में नहीं थे। जो हमारे सामने आया उसने हमें निष्प्राण कर दिया था। हम होश में तब आए जब हमने अपने इस घर में कदम रखा। तब हमारे दिमाग ने काम करना शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम चाहकर भी उन्हें ढूंढ नहीं सकते। इतने बेबस हैं कि अपने बेटे के दिल से बदले की भावना और नफ़रत को नहीं निकाल पा रहे, जिसके बीच कहीं न कहीं हमने ही उनके बचपन में उनके मन में बोए थे। शायद आप ठीक कह रही हैं। अगर हमने उस वक्त सावित्री जी और अमर पर अपने विश्वास को नहीं खोया होता तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। अगर तब हमने सच्चाई जानने और सावित्री जी को ढूंढने की कोशिश की होती तो आज शायद वो हमारे साथ होती और शान नफ़रत की आग में नहीं झुलस रहा होता। हमारा परिवार खुशहाल होता और दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी नहीं होती। लेकिन उस वक्त हम अगर अपने दोस्त और पत्नी पर पूरी तरह से अविश्वास नहीं कर सके तो हमने उन पर विश्वास भी नहीं किया और उसी की सज़ा भुगत रहे हैं कि अपनी आँखों से अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी और खुशियों को बर्बाद करते देखकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। सुभाष जी की आँखों में बेबसी के आंसू झलक आए। ठीक ही कह रहे थे वो, कभी कभी इंसान वो कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी कभी हमारी भावनाएं हम पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि उनके आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते। कभी कभी हमारी आंखों के सामने ऐसा भ्रमजाल निर्मित किया जाता है जिसके पीछे सच और झूठ को हम पहचान ही नहीं पाते और बुद्धि के अभाव में गलत को सही मानकर ऐसा गलत फैसला ले लेते हैं जिसका दुख हमें ज़िंदगी भर रहता है। उस वक्त जो और जैसे हुआ, जो हालात बने थे, उसमें कोई भी इंसान अगर सुभाष जी की जगह होता तो शायद उससे ये गलती हो ही जाती। तो इसके लिए उन्हें नहीं, वक्त, हालात और किस्मत को दोष दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो हुआ सब उनका ही किया धरा था। उनकी भावुकता भरी बातें सुनकर आरली की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसने खुद को संभाला, फिर उनके आंसू पहुँचते हुए बोली, आप दुखी मत होइए डैड, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें भी यही उम्मीद है कि अब इस नफ़रत और दुश्मनी का अंत हो जाए और दोनों परिवार फिर से साथ मिलकर खुशहाल ज़िंदगी जिएं, और ये सिर्फ आप कर सकती हैं, क्योंकि शान इस वक्त अपने होश में नहीं है और उन्हें आप ही इस नफ़रत में सब कुछ जलाकर राख करने से रोक सकती हैं। इस वक्त आप वो कड़ी हैं जिससे दोनों परिवार जुड़े हैं और आप ही उन्हें फिर से साथ ला सकती हैं। सुभाष जी ने भी खुद को संभाल लिया। उनकी उम्मीदें आरवी पर टिकी थी। ये सुनने के बाद आरवी पर प्रेशर बढ़ गया और वो कुछ परेशान सी नज़र आने लगी, पर उसने अपनी परेशानी को जाहिर नहीं किया और गंभीरता से बोली, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी डैड कि आपके विश्वास पर खरी उतर सकूं और इस दुश्मनी और नफ़रत के अंत की वजह बन सकूं। इसके बाद दोनों ही खामोश हो गए। बहुत कुछ चल रहा था उनके दिमाग में, पर उसे शब्दों में या तो वो बयां करना नहीं चाहते थे या शब्द ही नहीं थे उनके पास। कुछ देर बाद आरवी ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, डैड क्या वो वीडियो अब भी आपके पास है? सुभाष जी ने अजीब नज़रों से उसे देखा तो उसने तुरंत ही अपनी बात साफ करते हुए कहा, वो डैड सब उस वीडियो की वजह से हुआ है। अगर वो वीडियो मिल जाता तो शायद हमें सच्चाई तक पहुंचने का कुछ क्लू मिल जाता, बस इसलिए पूछा। भैया कह रहे थे कि वीडियो से काफ़ी मदद मिल सकती है। आरवी की बात सुनकर सुभाष जी के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने गंभीरता से सवाल किया, आप अर्जुन की बात कर रही हैं? आरवी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर उन्हें उनके सवाल का जवाब दे दिया, जिसे सुनकर सुभाष जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, आपकी अर्जुन से बात होती है? शान जानते हैं इस बारे में? उन्होंने आपको ऐसा करने से रोका नहीं? अब आरवी के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इन दिनों बस दो बार ही बात हुई है और उन्हें ऐतराज़ है मेरे भैया से बात करने से। पिछली बार बहुत नाराज़ भी हुए थे, इसलिए इस बार मैंने उन्हें पता नहीं चलने दिया। भैया सच पता लगाने में मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे बात करती हूँ। और अब मैंने सोच लिया है कि जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि मेरी भैया से बात होती है। बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने। अभी आप शान को इन सब के बारे में बिल्कुल मत बताइएगा और ना ही उन्हें ये बताइएगा कि हमने आपको सब बता दिया है, वरना वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। आप उनसे छुपकर ही अर्जुन से बात करिएगा। एक बार हकीकत सामने आ जाए तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आरवी ने बस सहमति में सिर हिला दिया। उनसे उसने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन परेशान सी बोली, जाने सच कैसा तूफान लेकर आएगा हमारी ज़िंदगियों में। ये उलझनें सुलझेंगी या अतीत में दफन उन राजों के बाहर आने के साथ साथ उनमें उलझकर ये रिश्ते टूटकर बिखर जाएंगे। पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि हकीकत चाहे जो हो, दोषी चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर उससे इस परिवार पर कोई बुरा असर ना पड़े। उसने मन ही मन फैसला किया, फिर सुभाष जी को देखकर गंभीरता से बोली, डैड क्या मुझे वो वीडियो मिल सकता है? नहीं बेटा, हमने उस वीडियो को यहाँ आने के बाद डिलीट कर दिया था। सुभाष जी ने मायूसी से इनकार में सिर हिला दिया। उनका जवाब सुनकर आरवी भी कुछ परेशान हो गई। फिर उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आरवी कुछ देर उनके साथ रही, फिर उन्हें रेस्ट करने को कहकर रूम से बाहर निकल गईं। हॉल में बैठी अर्पिता जी ने जब आरवी को सुभाष जी के रूम की तरफ से आते देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। जैसे ही आरवी उनके पास आई, उन्होंने हैरानी से सवाल किया, आरू बेटा, आप घर कब आई और भाई साहब के कमरे में आप क्या कर रही थी? आरवी उस वक्त अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी। अर्पिता जी की आवाज़ सुनकर उसने निगाहें उठाकर उन्हें देखा और सहजता से बोली, आज मन बहुत अजीब सा हो रहा था तो जल्दी आ गई। आप अपने कमरे में थीं तो डैड के पास जाकर बैठ गईं। आरवी का जवाब सुनकर अर्पिता जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं बेटा? आरवी ने उन्हें यूं परेशान होते देखा तो तुरंत ही हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जी बड़ी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर बस मन उदास हो रहा था। आप फ्रेश होकर आ जाइए बेटा, फिर हमारे साथ बैठिएगा। आरवी ने हामी भरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रूम में जाते ही उसने सावित्री जी की फोटो रश्मि को भेज दी और उसने अर्जुन को फॉरवर्ड कर दी। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी और बाथरूम में चली गई। जब तक वो फ्रेश होकर आई, अंशु भी उठ चुकी थी और उसकी उपस्थिति से आरवी अपनी सब चिंताएं भूल गई। आगे का आधा दिन अंशु, अर्पिता जी और सुभाष जी के साथ हंसी खुशी बीत गया। दूसरी तरफ शान आज बहुत तकलीफ में था, क्योंकि रिहर्सल देखते हुए उसको वो सब याद आ गया था जो सालों पहले उसके साथ किया गया था। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने दर्द को कंट्रोल किया और आज भी उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। आज अतीत के सीन की पूरी रिहर्सल हो गई थी। अब कल से आगे के सीन की रिहर्सल होनी थी, जिसमें उसे और आरवी को साथ में काम करना था। जैसे तैसे आज का दिन कटा, रिहर्सल खत्म हुई और पैकअप हो गया। सब प्ले मेंबर्स, क्रू मेंबर्स अपना अपना काम खत्म करके अपने अपने घर की ओर रवाना होने लगे। रश्मि भी चली गई। रेहान ने सब काम निपटाए, फिर शान के कैबिन की तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड।